तारीख 7 जून, दिन रविवार। दिन भर के साथ मैं संदीप सोनी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन करके लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव।
अभी केवल सीटों के बंटवारा जो असली चीज थी उस पर निश्चय हो गया है और अब ये तय हो गया कि गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा।
साक्षी महाराज ने कहा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही बनेगा राम मंदिर। बलात्कार के मुद्दे पर एक नेता ने फिर दिया विवादित बयान। संडे दिन भर में आज मुलाकात अरुंधति रॉय से।
हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा, हम तो नहीं बनाने देंगे, लेकिन कोई नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा।
होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की मध्यस्थता में हुई बैठक के बाद सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने इसका ऐलान किया। यादव ने कहा कि सीटों के बंटवारों के लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें दोनों दलों के 3-3 सदस्य हैं। हालांकि उन्होंने सदस्यों के नाम बताने से इनकार कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। ढाका में बोलते हुए मोदी ने कहा कि तीस्ता नदी के पानी बंटवारे के मुद्दे पर भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7 के जर्मनी में हो रहे सालाना सम्मेलन का पहला सत्र शुरू हो गया है। सम्मेलन से पहले बोलते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने विश्व के नेताओं से यूक्रेन में रूस के दखल के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूरोपीय संघ रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की जुलाई में समाप्त हो रही समय सीमा को आगे बढ़ा देगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने भी कहा है कि रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा। इस बार रूस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा,
हम अपने साझा भविष्य, नौकरियों और मौका पैदा करने वाली विश्व अर्थव्यवस्था, मजबूत और समृद्ध यूरोपीय संघ को बनाए रखने, प्रशांत महासागर के आर पार मजबूत व्यापारिक रिश्तों, यूक्रेन में रूस के आक्रमण के खिलाफ एकजुट होने और हिंसक चरमपंथ और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने पर चर्चा करेंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। BBC की एक जांच में पता चला है कि फुटबॉल नियामक संस्था फीफा की ओर से पूर्व फीफा अध्यक्ष जैक वार्नर के नियंत्रण वाले बैंक खातों में भेजे गए $1 करोड़ का क्या हुआ। इस पैसे से कैरिबियाई देशों में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए फुटबॉल सुविधाएं विकसित की जानी थी, लेकिन BBC ने जो दस्तावेज देखे हैं उनके मुताबिक वार्नर ने इन पैसों का इस्तेमाल नगद निकासी, व्यक्तिगत कर्ज और काले धन को सफेद करने के लिए किया। वार्नर ने खुद पर लगे सभी आरोप नकार दिए हैं। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉगर रैफ बदावी को सुनाई गई 10 साल की कैद और 1,000 कोड़े मारने की सजा को बरकरार रखा है। उन्हें ये सजा इस्लाम का अपमान करने के कारण सुनाई गई थी। सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन के विमानों ने यमन की राजधानी सना में एक सेना के मुख्यालय पर हमला किया है जिसमें कम से कम 44 लोग मारे गए हैं। विद्रोहियों के नियंत्रण वाली एक समाचार सेवा के मुताबिक इस हमले में सैकड़ों अन्य लोग घायल हुए हैं और तुर्की में हो रहे आम चुनावों में लोग मतदान कर रहे हैं। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी है और आप सुन रहे हैं दिन भर। रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। भारत की राजधानी दिल्ली में आज काफी गर्मी है। दिन भर आसमान से जैसे आग बरसती रही। दक्षिण भारत के कुछ एक हिस्सों को छोड़ दें तो भारत के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी तपती दोपहरी में दिल्ली में आज सियासत भी काफी गर्म रही। बिहार में विधानसभा के चुनाव यूं तो सितंबर अक्टूबर में होने हैं, लेकिन जोड़ तोड़ के लिए नेताओं की दौड़भाग अभी से तेज हो गई है। आज इसी सिलसिले में जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। क्या बात हुई खुलकर? वैसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस नेता शकील अहमद इतना जरूर बोले।
नीतीश जी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। पहली बार हम लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं, हम लोगों ने 3 बार नीतीश कुमार जी का समर्थन किया है। जब वो मोदी जी से के नाम पर अलग हुए भारतीय जनता पार्टी के, तब भी हम लोगों ने उनका समर्थन किया था। जब उन्होंने जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब भी हम लोगों ने उनका समर्थन किया था। और जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, तब भी हम लोगों ने उनका समर्थन किया है। आज की तारीख में नीतीश जी की सरकार को कांग्रेस का समर्थन है बिहार में, इसलिए राहुल जी से मिले हैं।
कांग्रेस नेता शकील अहमद और इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के आवास पर एक बैठक होती है, जिसमें लालू, नीतीश और कुछ अन्य नेता पहुंचते हैं जो पिछले कई महीनों से जनता परिवार को बनाने की कोशिश कर रहे थे। शाम 5:15 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव मुलायम सिंह के आवास से बैठक के बाद बाहर निकलते हैं।
आज की इस बैठक में ये निश्चित हुआ है कि RJD एवं JDU की तरफ से 3-3 सदस्यों की एक समिति सीटों के बंटवारे को तय करेगी तथा दोनों दलों के नेता सीटों को अंतिम रूप देंगे और शीघ्र ही इस कार्यवाही को संपन्न कर लिया जाएगा। मेंबर जो बनाए गए उनके नाम में डिस्क्लोज नहीं करूंगा।
मुख्यमंत्री पद को लेकर जो पूरा गहमा गहमी हो रही
है, कोई गहमा गहमी नहीं है, वो सब बाद में तय हो जाएगा।
होंगे नेता
ये सब अभी कुछ नहीं इस मामले में तय हुआ है, ये सब बाद में तय होगा। अभी केवल सीटों के बंटवारा जो असली चीज थी, जो हर्डल था, उस पर निश्चय हो गया है और अब ये तय हो गया कि गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा।
समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जो बता रहे थे मुलायम सिंह यादव के घर में जो बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देने में जरा भी देर नहीं लगाई। पार्टी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा,
ऑल दीज डिसग्रंटल फोर्सेस हु हैव एक्सेप्टेड डिफीट इन बिहार टुडे आर ट्राइंग टू रीग्रुप टू अपोज द भारतीय जनता पार्टी।
ये वो ताकते हैं जिन्होंने बिहार में अपनी हार आज स्वीकार कर ली है। ये दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका खेल खत्म हो गया है। बिहार के लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि उन्हें बदलाव करना है। ये शब्द थे राजीव प्रताप रूढ़ी के। और राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो कहा और उससे पहले राम गोपाल यादव ने जो कुछ कहा और उससे पहले दिन भर जो सियासी हलचल होती रही, आज इस पूरी हलचल के मायने समझने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से।
क्योंकि एक गतिरोध बना हुआ था बिहार में, खासकर इन दोनों दलों के बीच की भाई गठबंधन होगा, विलय होगा, और चूंकि उत्तर प्रदेश के भी जो दल है, खासकर समाजवादी पार्टी, वो इसमें एक स्टेक होल्डर थी और भी कई दल हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम साफ हो गया। और ये पहले भी लग रहा था जो, लेकिन इस पर एक निर्णय की मुहर लग गई कि अभी विलय की कोई बात नहीं है और सिर्फ इन दलों के बीच बिहार में चुनावी गठबंधन हो रहा है, मेनली जनता दल यू और RJD के बीच। दूसरी बात, जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है, जो मेरी जानकारी है एक पत्रकार के तौर पे, कि वो चीजें लगभग तय हैं, लेकिन इसको अनाउंस अभी नहीं किया गया है, क्योंकि आज की तारीख में नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो गठबंधन दल के नेता बनते हैं तो उनकी जो विश्वसनीयता है या उनकी जो प्रामाणिकता है वो किसी और नेता से ज्यादा है। वैसे भी लालू प्रसाद यादव जो RJD के चीफ हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, और चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते इसलिए उनके अगर दल में भी देखा जाए तो जितने और उम्मीदवार हो सकते हैं कोई ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार की बराबरी कर सके। अब ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, एक तरफ BJP के नेतृत्व में NDA और दूसरी तरफ RJD JDU के नेतृत्व में ये गठबंधन। जाहिर है इस गठबंधन में कांग्रेस से लेकर के लेफ्ट पार्टियां और NCP को भी लाने की कोशिश इन लोगों की होगी।
नीतीश कुमार की बराबरी करने वाला नेता इस गठबंधन में दूसरा कोई नहीं, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। भारत की सियासत में जितना महत्व बिहार का है, उतना ही महत्व उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के बीच एक जगह है जिसका नाम है उन्नाव। साक्षी महाराज यहाँ के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या और राम मंदिर से बड़ा पुराना रिश्ता है। उसी रिश्ते के नाते साक्षी महाराज ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया है।
बीजेपी राम मंदिर नहीं बनाएगी, उसके शासन में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कांग्रेस के में बनेगा कि मुलायम सिंह के में बनेगा कि मायावती के में बनेगा, ये निश्चित है कि हमारे ही शासन में राम मंदिर बनेगा। आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा। अभी तो हमें एक साल हुआ है, चार साल बीच में पड़े हुए हैं।
ये थे साक्षी महाराज जो कह रहे थे मोदी सरकार का अभी एक साल पूरा हुआ है, चार साल पड़े हुए हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि अयोध्या में मंदिर का मामला पहले से ही अदालत में है, और कुछ दिन पहले की बात है जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि सरकार के पास संसद में उतनी ताकत नहीं जितनी मंदिर बनाने के लिए ज़रूरी है, तो फिर थोड़े थोड़े दिनों में इस तरह के बयान क्यों आते हैं? नेता का चेहरा बदलता है, बात लगभग वही रहती है। ये मामला आखिर है क्या? इसी बात को समझने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कुमार से।
पार्टी में और संघ परिवार में कुछ लोग हैं जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे ये बुलवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से बात कही थी मॉरेटोरियम की, कि इस तरह के विवादित मुद्दों को 10 साल के लिए हम बैक बर्नर पे रख दें, केवल डेवलपमेंट की बात करें। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन लगातार है नरेंद्र मोदी को, जिससे लड़ना पड़ेगा।
राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कुमार जो कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह के विरोधाभासों से लड़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है तोताराम यादव। मैनपुरी में तोताराम यादव ने मीडिया ने जब मैनपुरी में तोताराम यादव से पूछा कि क्या बलात्कार की घटनाएं सरकार रोक नहीं सकती, इस सवाल पर तोताराम का जवाब था,
रोकी क्या सकती है आप बताइए, बलात्कार कोई स्वेच्छा से होता है? बलात्कार होता ही नहीं है, बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार।
समाजवादी पार्टी के नेता तोताराम जो कह रहे थे बलात्कार लड़का और लड़की की मर्जी से होता है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने बलात्कार के बारे में इस तरह की टिप्पणी की हो। वैसे कुछ अन्य दलों के नेता भी इस बारे में अक्सर कुछ ना कुछ विवादित बोल बोलते रहे हैं। बहरहाल तोताराम यादव या इस तरह की बात कहने वाले अन्य नेताओं के बयानों के पीछे मानसिकता या कहें कि वजह आखिर क्या हो सकती है, यही सवाल रखा मैंने भारत की पहली महिला IPS अधिकारी और राजनीति में भी हाथ आजमा चुकी किरण बेदी के सामने।
एक आउटडेटेड जनरेशन जो इस वक्त सीनियर बन चुकी है लेकिन सत्ता में है, उसकी मेजॉरिटी वोट से आई है और उस माहौल से आई है जो इन चीजों को नहीं देख के वोट दे रहा, उनको वैसे ही देख के पार्टी की मोहर लगा रहा है। ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त हमारे समाज में, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। आज की जनरेशन वो नहीं कह रही जो सत्ता की बैठी हुई है ऐसी व्यक्तियों की मानसिकता, आज हकीकत कुछ और है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सत्ता में बैठे हैं और जो कहते हैं हम मैंडेट से आए हैं, एक्चुअली है आउटडेटेड। इसीलिए ये जो कहते हैं अजीब लगता है क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी से दूर है।
ये थी किरण बेदी, और उनकी यदि बात पर हम एतबार करें तो सत्ता में बैठे इस तरह के कुछ लोग आउटडेटेड हो चुके हैं। आउटडेटेड उसे कहते हैं जिसके इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो जाती है। वैसे भारत युवाओं का देश है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में देख रहा था जो बताती है कि कुल आबादी के मामले में भारत चीन से भले ही पीछे है, लेकिन 10 से 24 साल की उम्र वाले लगभग 36 करोड़ लोगों के साथ भारत जो है वो दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है उस विशेष मुलाकात का जो हम आपको आज के दिन हर हफ्ते सुनवाते हैं। ये कहने की बात नहीं है, किताबों में आपने हमने सभी ने पढ़ी है कि भारत का संविधान हर धर्म के लोगों को अपने तरीके से रहने, अपने तरीके से पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन कई लोग हैं जो मानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में धार्मिक सद्भाव का जो ताना बाना था वो थोड़ा गड़बड़ाया है, थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ाया है, उसमें पहले से ज़्यादा तनाव आने लगा है। कई लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माहौल थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया है। बुकर प्राइज से सम्मानित लेखिका अरुंधति रॉय उन्हीं लोगों में से एक हैं। अल्पसंख्यकों के कई मुद्दों को अपने राजनीतिक लेखों से आवाज़ देती रही हैं। अरुंधति रॉय देश के मौजूदा माहौल को मानती हैं वो बहुत डराने वाला माहौल है। केंद्र सरकार के प्रति उनके मन में इतनी शंकाएं आशंकाएं क्यों हैं? सुनिए विस्तार से बातचीत बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य के साथ।
अरुंधति, एक साल मोदी सरकार को हो गया है और इस साल के दौरान कई तरह की आवाज़ें उठीं, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, और ये एलिगेशंस लगे कि उन पर फिज़िकल हमले भी बढ़े हैं और एक मेंटल तरीके से भी वो इस वक्त बहुत घबराहट महसूस करते हैं। क्या इस आंकलन से आप इत्तेफाक रखती हैं?
देखिए, एक तो मैं पहले बोलूँगी कि जब हम लोग माइनॉरिटीज़ कहते हैं, इस देश में सब लोग एक ना एक किसी न किसी तरीके से अपने आप को माइनॉरिटी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हमला हो रहा है, दलित के ऊपर हमला हो रहा है, आदिवासी लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, और ये सब मिलके एक बहुत बड़ा मजॉरिटी बन जाते हैं गरीब, और उनका ज़मीन छीना जा रहा है, उनका रोज़ी रोटी छीना जा रहे हैं, और उनको ये बोला जाता है कि अरे बहुत साल के बाद हमारा हिंदू सरकार आ गए। लेकिन अब दोनों के बीच में किस्म के टेंशन है, क्योंकि पहले से ही जो लोग अपने आप को बहुत ही नेशनलिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट कहते आ रहे हैं, वही लोग देश का संपत्ति बेचना चाहते हैं, और अभी बहुत ही तेज़ी से बेच रहे हैं। पहले भी बेच रहे थे मनमोहन सिंह का सरकार, लेकिन अब उसका स्पीड बहुत बढ़ गया। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट जब बदलेंगे और लोगों का कंसेंट भी नहीं लेना पड़ता है, सीधा आप उसको लेके कॉर्पोरेट को दे दो। इस वक्त 100 परिवार के पास उतना संपत्ति है जो हमारे देश के 25% GDP का जितना है, और अगर आप ये पूरे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को देखो तो सब एक ही जाति के होते हैं और वो एक बहुत छोटा सा माइनॉरिटी के। तो एक्चुअली हमारे देश माइनॉरिटीज़ चला रहे हैं, बट वी जस्ट लाइक टू थिंक द माइनॉरिटीज़ आर मुस्लिम, राइट?
यहाँ आप माइनॉरिटी कह रही हैं उस तबके को जो बहुत धनी है।
हाँ,
आप कह रही हैं वो एक माइनॉरिटी है और जो मेजॉरिटी है वो गरीब है और उस पर उनका एक दबदबा है।
नहीं, मैं ये भी कह रही हूँ कि उसमें भी जाति का एक फिल्टर लगा के आप देखिए तो जाति का बहुत बड़ा इसमें खेल है, और एक तरह से हमारे पहले जैसे फ्यूडलिज्म था जिसमें बड़े बड़े ज़मींदार या तो ठाकुर या तो जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग मीडिया ओन करते हैं और जो लोग कॉरपोरेट फैमिलीज हैं उनके पास सब कुछ जा रहा है, अभी लैंड, वाटर, मीडिया, सब कुछ, और एक किस्म के एक अंग्रेज़ी में कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर, जैसे आप मुसलमान के ऊपर हमला करो या दलित के ऊपर हमला करो और पूरा अटेंशन उसमें चले जाते हैं, जब तक आप पूरा ये कॉरपोरेट लोगों के पास माइंस दे रहे हैं, डैम्स दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, एडुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं।
अर्थव्यवस्था का और अल्पसंख्यकों पर जो हमले हैं आप कह रही हैं उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है जो शायद आसानी से सतह पर लोगों को दिखाई भी नहीं देता है। अल्पसंख्यकों पर हमलों की तादाद अगर हम आंकड़ों में देखें तो इतनी नहीं बढ़ी है पिछले एक साल में, लेकिन बार बार हम एक फियर के, एक डर के माहौल की बारे में सुनते हैं। क्या आपको लगता है ये डर का माहौल सचमुच है? क्या इतनी ज़्यादा हिंदू ताकतें जिन्हें कहा जाता है वो सचमुच इतनी बड़ी हैं? क्या ये सही है?
बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? जब कोई इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कैंपेन जो एक साल पहले हुआ, तब मुजफ्फरनगर में हुआ, सब बहुत साल पहले 2002 में गुजरात में हुआ, और वो जो नरसंहार है उस एक किस्म का इलेक्शन कैंपेन ही बनता है, और जब ये पार्टी जो ये करते हैं जब वो पावर में आते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होता कि बार बार उसी लेवल का वायलेंस करो, लेकिन लोगों को दबा के रखो।
हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ कि इसी पार्टी ने 2002 के दंगे कराए या मुजफ्फरनगर के दंगे कराए, पर आपका ऐसा आंकलन है?
ये तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है, जब कोई चीफ मिनिस्टर होता है कोई स्टेट का, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, नहीं उनका अपना रेटोरिक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लीगली आप कह सकते हैं कि इसने ये कत्ल किया उसने ये कत्ल किया, पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं एक स्टेट का। कभी भी उसका अपॉलॉजी भी नहीं हुआ, किसी तरह का अफसोस नहीं हुआ। नहीं तो मेरे ख्याल में यही है कि अभी एक मजॉरिटेरियन सोसाइटी को तैयार किया जा रहा है। सिर्फ हम लोग दंगा और मारपीट को नहीं देखते, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी का करिकुलम में क्या हो रहा है, कौन सा किताबें बैन हो रही है, टीवी पे क्या चल रहा है, कैसा माहौल बन रहा है, ये आप अगर यहाँ रहते हैं तो कोई नहीं कह सकते कि दबाव नहीं बढ़ रही है। बहुत डरावनी एक माहौल है।
अभी मुंबई से खबरें आईं कि एक शख्स थे, उनको एक ईमेल आया कि उनको नौकरी नहीं दी जाएगी क्योंकि वो मुसलमान हैं। उसके दो दिन बाद एक महिला ने कहा उनको रहने की जगह नहीं मिली, हटना पड़ा एक अपार्टमेंट से क्योंकि वो मुसलमान थी। पर क्या ये जो एक माहौल है, क्या ये हमेशा से ही या एक लंबे समय से भारत में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी में कुछ अलगाव या घेटोज में रहना, दिल्ली में भी, क्या ये रहा नहीं है? क्या बीजेपी सरकार आने के बाद इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है?
हमारे जो कल्पना में लोगों को ऐसे अलग अलग करके रखना पुरानी चीज़ है। जैसे अभी जिनको घर नहीं मिल रहे हैं या जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है, ऐसे तो हमारे समाज में दलित कैसे रहते थे गांव के बाहर? कोई दलित आज भी जाएगा बॉम्बे में घर ढूंढने के लिए? शायद ऐसे ही होंगे उनके साथ, लेकिन जब मिडिल क्लास के साथ होता है तो थोड़ा अलग हो जाता है। और ये नहीं है कि अभी से शुरू है, पार्टीशन क्यों हुआ था इसीलिए क्योंकि बहुत बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे पूरा कल्टीवेट किया जा रहा है, बहुत बहुत सिस्टमैटिकली कल्टीवेट किया जा रहा है एक दूसरी किस्म का कल्पना समाज के बारे में, सिस्टमैटिकली टेक्स्ट बुक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में कोशिश से कल्टीवेट किया जा रहा है। और सिक्का की दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर।
एक और हमने एस्पेक्ट देखा है कि एनजीओज जो हैं, जो मानवाधिकार संगठन हैं, उनके काम को लेकर भी सरकार की तरफ से आपत्तियां जाहिर की गई हैं, कभी उनके फंडिंग को लेकर, या तीस्ता सीतलवाड़ जो गुजरात में काम कर रही थी उनके भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को सामने लाया गया। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में ऐसी आवाज़ें या ऐसे संगठनों को भारत में काम करने में दिक्कत होगी, या ये कुछ एक ही उदाहरण है और इनको नॉर्म ना माना जाए?
नहीं, बजरंग दल और VHP भी NGOs ही है ना, उनको भी बाहर से पैसे आते हैं। कुछ NGOs को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कुछ जो सवाल उठाते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाएगा। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब ये सरकार महसूस करते हैं कि उनका सपोर्ट कम हो रहा है या लोग बहुत ही डिसिल्यूजन हो रहे हैं उनके साथ, वो जंग छेड़ेंगे पाकिस्तान के साथ और इसी से निकलने की कोशिश करेंगे। और सब दुनिया, पूरी दुनिया को मालूम है कि दोनों तरफ न्यूक्लियर आर्म्स है। बहुत खतरा है इसमें, बहुत ज़्यादा।
अभी कई लेख लिखे गए मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर, एक प्रताप भानु मेहता ने भी लिखा और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, करोजन। उन्होंने कहा ऊपर ऊपर सब ठीक लगता है पर नीचे एक करोजन यानी कि चीज़ों के उखड़ने या कम होने की, उनका प्रभाव कम होने की बात। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं आगे की ओर, ख़ास तौर पर जब देखती हैं इसका क्या इम्पैक्ट देखती हैं इस करोजन का?
करोजन बहुत अलग अलग किस्म का हो रहा है। एक तो पूरा ऑल द राइट्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को करोड किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर भी मेरे ख्याल में एक बहुत अजीब किस्म का करोजन हो रहा है, क्योंकि मोदी अब पूरा पावर अपने हाथ में ले रहे हैं। एक तरह से एक आई थिंक ह्यूमिलिएशन, एक बेइज्जती हो रहा है बाकी लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी यही हो रहा है। एक एक डर, एक पूरा फ्रोजन, द मशीनरी इज फ्रोजन, इन सब का जो नतीजा है थोड़ी देर बाद आएगी।
तो क्या आप जैसे जो लोग हैं जो बहुत खुलकर बेबाकी से लिखते हैं, इस सारे माहौल का आप पर कोई असर पड़ता है?
इतनी बेबाकी से तो नहीं लिखती हूँ मैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो अटैक होते हम पर, ऐसा नहीं है कि सीधा सरकार अटैक करेंगे, उनके गुंडे होते हैं, फॉल्स केसेस फाइल किया जाते हैं, बहुत हज़ारों लोग जेल में हैं और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो फिर दिखाते ना कि देखो ये खुलेआम बोल रही है, कुछ नहीं हुआ इसको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये, किसको छोड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, किसको क्या करेंगे, कौन करेंगे, सरकार करेंगे, कोर्ट करेंगे, पुलिस करेंगे, सड़क पे गुंडे करेंगे, लेकिन माहौल तो बहुत ही सीरियस है।
तो आगे देखते हुए अभी इस सरकार के 4 और साल बाकी हैं, क्या आपको लगता है कि, क्योंकि आपने करोजन की बात पार्टी के अंदर भी की और आपने सरकारी स्कीमों में भी की, आपने हिंदू मुस्लिम रिश्तों में भी की, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे बदलाव में या सांप्रदायिकता में भी की, तो आने वाले समय में कौन सी ताकतें आपको लगता है हावी होंगी? क्या बहुत बड़ा बदलाव आएगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा?
हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा, हम तो नहीं बनाने देंगे, लेकिन कोई नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि इतना आजकल जो इतना स्पीड से बनते हैं बातें, बिगड़ते हैं बातें, मीडिया, सोशल मीडिया को लेके, एक साल पहले सब सोचे थे कि अरे ये सरकार तो 10 साल होगा, अब तो लोग सोच रहे हैं कि ये पूरा टर्म कर पाएंगे कि नहीं। एक बार उसने अपना वो सूट जिसमें अपना नाम लिखा हुआ था, उससे कितना बिगड़ गया, मतलब खोखला हो गया ना, जो मैं चाय वाला हूँ ये वो सब कह के आए थे, फिर 10 लाख रुपया का सूट। मैं नहीं कह सकती हूँ कि क्या होगा, क्योंकि बहुत स्पीड से बदलते ही लोग, अभी जैसे सबको मालूम है कि पेट्रोल का प्राइस दबा हुआ है, इसीलिए जो कुछ चल रहा है चल रहा है, जैसे वो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा क्या मालूम क्या होगा।
शुक्रिया बीबीसी हिंदी से बात करने के लिए अरुंधति रॉय।
और इसके साथ ही वक्त हो चला है खेल की खबरों का, आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, अगर बात की जाए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, तो वहां पुरुष एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और 8वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच फिलहाल दूसरा सेट खेला जा रहा है, जहाँ वावरिंका 3-2 से बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन इससे पहले पहले सेट को नोवाक जोकोविच ने 6-4 से अपने नाम किया था। जोकोविच के खाते में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो जीत जाते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट को वो इससे पहले कभी नहीं जीत पाए हैं। और भारत के लिए एक अच्छा समाचार, क्योंकि चीन में संपन्न एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की टिंटू लुका ने आखिरकार महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद उनसे बहुत पहले की जा रही थी, लेकिन कामयाबी उन्हें अब जाकर मिली। उन्होंने 2:01.53 के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये किसी भी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में उनका पहला स्वर्ण पदक है। उधर इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब 8वीं वरीयता हासिल जापान के केंतो मोमोता ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने 3री वरीयता हासिल डेनमार्क के यानो योर्गेंसन को 16-21, 21-19, 21-7 से हराया। इससे पहले मोमोता ने इसी साल सिंगापुर ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं महिला एकल वर्ग का खिताब 6री वरीयता हासिल थाईलैंड की रथचानो किंतानोन के नाम रहा। उन्होंने फाइनल में जापान के यूई होशिमोतो को 21-11, 21-10 से मात दी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते विश्व समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7 के जर्मनी में हो रहे सालाना सम्मेलन का पहला सत्र शुरू हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विश्व नेताओं से यूक्रेन में रूस के दखल के खिलाफ एकजुट होने के लिए कहा है। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉगर रैफ बदावी को सुनाई गई 10 साल की कैद और 1,000 कोड़े मारने की सजा को बरकरार रखा है। सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब गठबंधन के विमानों ने यमन की राजधानी सना में एक सेना मुख्यालय को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 44 लोग मारे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। ढाका में बोलते हुए मोदी ने कहा कि तीस्ता नदी के पानी बंटवारे के मुद्दे पर भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। तुर्की में हो रहे आम चुनावों में लोग मतदान कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
आज दिन भर में इतना ही। कुणाल शर्मा खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मदद कर रहे थे। 1.5 घंटे के बाद रात 9:30 बजे घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को अनुमति दीजिए।